نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو كتب عليكم الصيام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتبہ علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب شعبان آتا ہے تو ساتھ ہی رمضان کا شور مچ جاتا ہے, ہر جگہ پہ حلقے ہونے لگتے ہیں, ماشاءاللہ مساجد میں خطبات میں اس کا ذکر ہونے لگتا ہے اور ایک ڈفرینٹ ہی خوشی ہے اس مہینے کی. آپ دیکھیں پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا اس طرح سے انتظار ہوتا ہے یا ایسی خوشی ہوتی ہے یا ایسی رونق ہوتی ہے. تو ویسے تو ہر دن دیکھیں سورج نکلتا ہے مشرق سے, غروب ہوتا ہے مغرب میں, ہر دن سیم ہے, لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے سورج تو وہیں سے نکلے گا اور وہیں غروب ہوگا, مگر جو اس کی برکتیں ہیں, جو اس کی رحمتیں ہیں, جو اس کی رونق ہے, وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اگر رمضان نہ ہوتا تو کیا ہوتا, کیا مسجدیں اسی طرح آباد ہوتی ہیں جیسے رمضان میں ہوتی ہیں, کیا اسی طرح ہم 30 دن کے روزے رکھتے لگاتار جیسے اب رکھتے ہیں, کیا اسی طرح سے ہم اپنی نمازیں قیام اللیل جو تراویح ہے اس طرح سے ادا کرتے, ایسا کچھ بھی نہ ہوتا. یا کیا اسی طرح قرآن کھولتے جیسے اب ہم ہر روز کھولتے ہیں اور رمضان کے ایک ایک دن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ برکتیں رمضان کی ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ دیکھیں دنیا میں مختلف جگہیں ہیں, بڑی بڑی خوبصورت جگہیں بھی ہیں, لیکن جو برکت اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو دی ہے اور حرم مدینہ کو دی ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں. اسی طرح کلام تو سبھی ہیں, لیکن ایک کلام ایسا ہے اللہ کا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے وہ ہر کلام میں نہیں ہو سکتی. الفاظ تو وہی ہیں نا, عربی کے الفاظ ہیں. اسی طرح سال کے سارے مہینے اور سارے دن اللہ کے ہی ہیں, لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا اپنی رحمت کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اسی لیے اس کا انتظار کرتے ہیں ہم کہ کب یہ مہینہ آئے گا تو ہم یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹ سکیں. صحابہ کرام تو یہ جو مہینہ رمضان کا تھا نا, اس کی فضیلت ایسی سمجھتے تھے کہ وہ کسی کے دیکھنے ہوتے تھے نا کہ اس کے درجات کتنے بلند ہیں یا کیا ہے, تو وہ یہ دیکھتے تھے اس نے اپنی زندگی کے کتنے رمضان دیکھے ہیں. سبحان اللہ, یعنی ان کو یہ لگتا تھا جس نے جتنے زیادہ رمضان دیکھے ہیں اتنے اس کے مرتبے بلند ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمانے والا ہے, اور دو چیزوں کے ساتھ, صحت اور ایمان. صحت نہ ہو تو تب بھی مشکل, اور ایمان نہ ہو تو پھر بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, رمضان ہی ہوتا ہے لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو جس کو رمضان ان دو چیزوں کے ساتھ نصیب ہو گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے. تو اس لیے ہم نے رمضان کا استقبال ایسے رسمی سا نہیں کرنا کہ ہم بھی رمضان کا درس ہے اور چلو اٹینڈ کر لیں. دیکھنا ہے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا, یہ مہینہ کیوں آ رہا ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں بڑا قیمتی ہے یہ مہینہ, ہمیشہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لاسٹ ایئر تھے اس سال نہیں ہیں, آپ کے کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ لاسٹ جو رمضان تھا وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. تو ہمیں نہیں پتا کون سا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. ہر رمضان کو یہی سوچ کے گزارنا ہے پتہ نہیں اس کے بعد نصیب ہو یا نہیں ہو. یہ اتنا پیارا مہینہ ہے. اس مہینے میں سمجھ لیں کہ انسان جو سارا سال آوارہ پھر رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے, پکڑ کے لے آتا ہے, پیار سے لے آتا ہے. مجھے یاد آ رہا تھا جب میں کل آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم کئی پروگرام دیکھتے ہیں نا, اس میں انعام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, باکسز بھی ہوتے ہیں, گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, بائکس کھڑی کی ہوئی ہیں, بمپر پرائز, اتنے لاکھ کا کیش, اتنے کا جو अच्छा वो किस लिए होता है कि लोग जरा शौक से उसमें हिस्सा लें और बड़े वो करें। तो जो लोग आते हैं हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे गाड़ी मिल जाए या बड़ा इनाम मिले, फर्स्ट प्राइज मुझे मिल जाए। और सोच क्या होती है, किसी को हराऊंगा तो फिर मुझे मिलेगा, क्योंकि प्राइज एक होता है ना, तो गाड़ी एक ही उन्होंने खड़ी की होती, गाड़ी एक को ही मिलनी होती। अल्लाह ताला ने ना रमज़ान को इतने सारे इनामात के साथ सजा दिया है। हाँ, कहीं फ़र्ज़ अदा करोगे 70 फ़र्ज़ों के बराबर, नफल अदा करोगे फ़र्ज़ के बराबर। हर दिन जो है अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद कर रहे हैं लोगों को, और फिर इसी तरह जन्नत के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, शयातीन को बंद किया जा रहा है। कितनी गहमा गहमी हो गई भाई, और इनाम कितने रख दिए कि जहन्नुम से आज़ादी दे दी, मग़फ़िरत दे दी। जो अल्लाह के ऊपर ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़ा रखेगा, डाइटिंग के लिए नहीं, सवाब की नीयत से रोज़ा रखेगा, फिर उसके लिए क्या है, पिछले सारे गुनाह माफ़। जो क़ियामुल लैल करेगा उसके लिए पिछले सारे गुनाह माफ़। ये क्या है, प्राइजेस, प्राइजेस का इंसेंटिव दिया आपको, देखो ये भी प्राइज मिल सकता है। और हाँ, एक रात भी रख दी, 1000 महीनों से ज़्यादा उसकी इबादत का अजर है, वो बहुत बम्पर प्राइज है, बिग प्राइज। इतने बड़े बड़े प्राइजेस दिखा के अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि सारे इसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें। और ये प्राइज वो नहीं है कि जिसमें एक को मिलना है, हम सबको भी मिल सकता है। देखिए जब प्राइस एक होता है ना, और मसलन यहाँ पे कोई एक गाड़ी रखे हैं वो, और हम सारे मुकाबला करने वाले हों, तो गाड़ी तो एक को ही मिलेगी ना। लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है, अल्लाह के यहाँ जितने लोग हैं उतने ही प्राइस भी हैं। सारे फर्स्ट प्राइस ले सकते हैं, सब जीत सकते हैं, कोई भी ये बिल्कुल इसमें हमसे कहाँ होगा, हमसे कहाँ किया जाएगा, ये नहीं सोचना, हम सब कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने आसान बना दिया ना, तुम आगे बढ़ के तो देखो, तुम करके तो देखो, यू कैन डू इट। तो हिम्मत नहीं हार के बैठना, हमसे कहाँ, वो तो ये बड़े बड़े लोग करते हैं, वो तो फलां लोग करते होंगे। नहीं, मैं और आप सब 1000 महीनों से ज़्यादा की इबादत का अजर हासिल कर सकते हैं, हम सब इसमें अपनी मग़फ़िरत करा सकते हैं, हम सब इसमें से जहन्नुम की आज़ादी का परवाना ले सकते हैं। बिग बिग प्राइजेज हैं और हम सब ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जहन से निकाल दें कि वो पता नहीं कौन होते हैं लोग जो लेते हैं और करते हैं, हम सब करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। तो ये अपने एक तो इरादा कर लें, इरादा सबसे पहली चीज़ होती है ना, इरादा कर लें कि मैंने भी बम्पर प्राइज़ जीतना इस दफ़ा। ठीक है, तो अल्लाह ताला इंसान को बड़े प्यारे तरीके से, ये अल्लाह के तरीके हैं अपनी तरफ बुलाने के, अल्लाह ताला बड़े प्यारे तरीके से इस तरह प्यार प्यार से, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर रखी हैं, देखो आ जाओ मेरी तरफ। देखें इनामात की एक भरमार है अल्लाह के यहाँ, और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो दे के थकता नहीं है, देने के बाद पूछता नहीं है, और दे के जताता नहीं है। और जब हम ये हदीस सुनते हैं ना कि तमाम जिन्नो इंस, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के मर्द औरतें बूढ़े बच्चे जिन इंसान सब भी जमा हो जाएं और अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह सबको अता करे, तब भी उसके ख़जानों में एक ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। जब आप हरम में जाते हैं तो इतना, वैसे क्राउड तो हमें इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन हज उम्रे पर आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं, हर एक के होंठ हिल रहे होते हैं, हर एक कुछ ना कुछ मांग रहा है। उस वक्त आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तो हर एक की सुन रहा है, और ये सारे हमारे करीब बोलने लगे तो हमें ये भी नहीं समझ आएगी कौन क्या बोल रहा है। लेकिन अल्लाह तू सुन भी रहा है, तू उनकी दुआओं को कबूल भी कर रहा है, तू अता भी कर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये तेरी ही कुदरत है। इन सब को आप सभी बोलने लगे, आप सबके होंठ हिलने लगे, तो समझ नहीं आएगी कौन ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। लेकिन वो मेरा रब ही है। लाखों करोड़ों इंसान और जिन और चींटियां और परिंदे और जानवर सब उसे मांगते हैं और वो सबको अता करता है। तो ऐसे सखी के दरवाजे पे जा रहे हैं हम रमज़ान में। आप देखें जो जितना बड़ा सखी होता है ना, उससे उतने ज़्यादा की उम्मीद होती है। हमारे पास कोई आए अगर डोनेशन के लिए या कोई पैसे मांगने के लिए, चलो हम 50 100 50 निकाल देंगे। कोई ज़्यादा किसी बड़े के पास, अमीर के पास चला जाए तो वो उसके लिए $1000 कोई चीज़ नहीं होगी, वो दे देगा। उससे भी बड़े के पास चला जाएगा वो तो 10 12 हज़ार भी देना उसके लिए कोई मसला नहीं है, जो करोड़ों के मालिक होते। तो अल्लाह ताला कितने ख़जानों का मालिक है, कि स्कूल के कुल खजाने हैं ही उसके, जितना बड़ा होता है ना हमें उससे इतनी उम्मीद होती है कि ये ज्यादा देगा, जिसके पास जितना ज्यादा होता है तो अल्लाह ताला के पास कितना है सोचे, और वो अता करने में बुखल नहीं करता, वो अता करने में ऐसे नहीं करता कि गिन गिन के दे, वो है जो बेहिसाब अता करता है। तो उस रब के से हम मांगने के लिए जा रहे हैं इस महीने में, उस रब ने हमें अजर देना, तो इसलिए थोड़ी दिली के साथ नहीं इबादत करनी, इसलिए अपने आप को इसके लिए यानी समझ लें कि डेडिकेट कर देना, क्योंकि हमें अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमें भी बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। रोज़े का तो फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा, ये फरमाया ना कि मैं ही इसका अजर दूंगा, तो वो अजर कितना है उसका कोई हिसाब है हमें? हमें कोई हिसाब नहीं है। ओके, वो अल्लाह ताला जो फरमा दे कि मैं इसका अजर दूंगा, तो सोचे इतने बड़े रब्बे कायनात ने ये फरमाया, और जब वो अता करने पे आएगा तो फिर अंदाज़ा कीजिए उसकी अता का। इसलिए बताया नहीं कि कितना, क्वांटिटी नहीं बताई, वो तुम जब अल्लाह के पास आओगे तो तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा, तो कि वो इनाम क्या है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखा हो। और जैसे हम वो हम कोई मज़दूर वगैरह लेने जाते हैं आप काम कराने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो क्या होता है मज़दूर के साथ हम एक मज़दूरी तय करते हैं और कहते हैं भाई आके काम करो, और ये जब वो काम कर लेता है तो हम उसको उतनी ही उतनी मज़दूरी देते हैं, लेकिन जो जिनके जो ज़्यादा मालदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर काम देखते हैं और साथ मज़दूरी भी देते हैं, साथ टिप भी दे देते हैं, है ना। जितने ज़्यादा बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं हमें काम पसंद आया बस ठीक है, ये लो और इनाम। और अल्लाह ताला इतना बड़ा बादशाह है कि जब उसको काम पसंद आ जाए कि मेरे बंदे ने मज़दूरी की है, सुबह से लेके शाम तक मेरी खातिर भूखा रहा है, तो वो जब नवाजेगा तो उसकी टिप्स कैसी होंगी बताएं। और फिर ये कि अल्लाह ताला जो मज़दूरी के बारे में ये हुक्म देता है हमें कि कब मज़दूरी देनी है, आपने भी ये हदीस सुनी होगी कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दो, ऐसा ही है ना। हाँ, और जब रब मज़दूरी कराए तो बताएं जो अपने बंदों को ये हुक्म देता है कि तुम इंसानों के साथ ऐसा सलूक करना कि पसीना खुश होने ना पाए, मज़दूरी पहले मिल जाए, वो कैसी प्यारी मज़दूरी देगा और कितनी जल्दी अता करेगा। तो इस सोच के साथ फिर इस महीने को शुरू करना है कि अल्लाह के ख़ज़ाने खुल गए हैं, उसने अपनी जन्नत की जो नेमतें हैं जन्नत को सजा दिया गया और दरवाज़े उसके खोल दिए गए हैं, और हमें ये इंसेंटिव दिया है कि तुम लोग अपनी बुकिंग करा लो जन्नत में, अपनी बुकिंग करा लो। पता है ये कैसे है, जैसे ओपन हाउसेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं एक घर तामीर करते हैं, फिर वो जो बिल्डर होता है वो एक दिन ओपन हाउस करता है और कि आप आएँ और घर को देखें, और फिर आपके मुंह में पानी आता है कि ये घर तो हम ले लें और बस इसकी कीमत अदा करनी और ले लें। अब ओपन हाउस ने क्यों रखा होता है, ताकि आप देखें और आपका दिल चाहे कि मैं ले लूं। आओ मुफ्त में आओ आके देखो। अल्लाह ने भी अपनी जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत का ओपन हाउस है, जन्नत को देखो और इसकी कीमत अदा करने की तैयारी करो। जो इसकी कीमत अदा कर देगा वो इसको पा लेगा। और रमज़ान जैसा हम गुजारेंगे ना वैसा ही हमारा पूरा साल गुजरता है। ये रमज़ान एक समझ लें एक छोटा सा मॉडल है, ये जैसे आप कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई वो बनाने लगते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, और मॉडल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मॉडल देख लो इस तरह की बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह रमज़ान से पता चलेगा कि हमारा अगला साल कैसा गुजरेगा, इससे पता चलेगा। उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी पसंद आई मुझे, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे, 11 भाई। अच्छा, तो वो उन 11 भाई की बख्शिश हो गई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से। तो वो कहते हैं कि रमज़ान भी जो ऐसे ही है जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, हाँ, कि आपके 11 महीने के गुनाहों की भी बख्शिश हो जाती है इस एक रमज़ान की वजह से। तो ये इतना प्यारा महीना है, ये दिल की तरह है, जैसे हम कहते हैं दिल सलामत हो किसी का तो उसका जिस्म सलामत रहता है, दिल को सही होना चाहिए ना, इसी तरह रमज़ान है, रमज़ान को सही होना चाहिए तो आप देखेंगे पूरा साल सही आपका गुजरेगा आने वाला। और जिसने पूरा साल सही गुजार दिया, अगला रमज़ान आएगा वो भी वैसा ही गुजारा, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे हो गई ना। तो जिसकी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजरेगी, फिर जब मौत आएगी तो ऐसी ही होगी जैसे ईद का दिन। रमज़ान के बाद क्या आता है? ईद आती है। तो जिसने पूरी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारी, उसकी मौत जो उसके आखिर लास्ट डे है वो ईद की तरह होगा। वो किसी ने शेर बड़ा अच्छा कहा कि जिसकी ज़िंदगी हो रमज़ान की तरह, मौत आएगी उसको ईद के चांद की तरह। ऐसी फिर मौत होगी कि फिर उस दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो ये रमज़ान ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, और इसकी हम कदर जाने, इसका कोई लम्हा ऐसा ना हो कि जो हमसे ज़ाया हो जाए। इसके शर्फ़ को इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार किया करते थे कि कब रमज़ान आए। ये इसकी रहमतें, इसकी बरकतें, मैं कहती हूँ सिर्फ़ इससे अंदाज़ा लगा लें कि हर रात और हर दिन अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। हर रात और हर दिन इसका, कि जिनका नाम जहन्नम की लिस्ट में आ चुका है कि ये लोग जहन्नमी हैं, अल्लाह ताला उनको फ्री कर देते हैं जहन्नम से, आज़ादी मिल जाती है उनको जहन्नम से। अब हमें नहीं पता हमारा नाम किधर लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास चांस है कि अगर हमारा नाम उसमें है तो हम अपना नाम वहाँ से निकलवा के जन्नतियों की लिस्ट में डलवा सकते हैं। वो नहीं सदर वज़ीर आज़म वगैरह कहते हैं जब वो कोई ईद वगैरह आती है, तो कहते हैं वो कैदी जो हैं उनमें से कैदियों की इतनी माफ़ है उनकी सज़ा, जिनकी बिल्कुल एंड पे आई होती है उनकी वैसे ही माफ़ कर देते हैं कि इसके बाद जो है ना बस इनकी माफ़ी है, इनको छोड़ दिया जाए। तो पता नहीं कितने जहन्नम के कैदी हैं जो इस महीने में रहाई पा जाए। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की एक और रहमत जो इसमें है हमारे लिए, वो ये है कि अल्लाह ताला इसमें रोज़ेदार का इफ्तार के वक्त की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। आप अब ये अब हम शायद सुन सुन के हमें इतना ना लगता हो कि ये कोई शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर देखें कोई किसी को आप बहुत बड़े वलीउल्लाह समझते हैं या किसी को आप बहुत नेक समझते हैं, और वो आपसे कह दे कि जी मुझे इल्हाम हुआ है फलां वक्त में दुआएं कबूल होनी है, ये कबूलियत का वक्त है, तो हम उसकी बात पे यकीन करके कितने जज्बे के साथ, कितने शौक़ के साथ दुआ करेंगे और वो कितना एहतमाम करेंगे। और ये बात हमें इमामुल अंबिया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, लेकिन शैतान ऐसा करता है उसी टाइम आके हमें किसी ऐसे काम में उलझा देता है कि हम बस दुआएं ना कर सकें। ये तो समझ लें अल्लाह ताला ने ब्लैंक चेक हमें दे दिए, सिग्नेचर हुए पड़े हैं, अल्लाह के सिग्नेचर हुए पड़े हैं कि हाँ मैंने देना है इसको, आपने बस अमाउंट लिखनी है कि मुझे कितनी चाहिए, क्या चाहिए, वो अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। अमाउंट लिखने का टाइम है और हम किचन के अंदर खड़े में और इफ्तारियों बनाने में मसरूफ़ है, या हम उस वक्त अगर बैठ भी जाएंगे तो इधर उधर की बातें करने लगेंगे या खाने में ध्यान हो जाएगा हमारा, वो वक्त हम ज़ाया कर देते हैं जो अमाउंट लिखने का टाइम है। सब कुछ हो चुका, अब सिर्फ आपने मांगना है कि कितना चाहिए मुझे। हर कोई एहतमाम करे कि उस वक़्त में मांगू, उस वक़्त में अल्लाह ताला से जो भी आपकी दुनिया की हाजात हैं, आखरत की हाजात हैं, हमारी तो हाजतें इतनी ज़्यादा हैं, हमारी तो ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम तो किसी वक़्त अल्लाह से बेनियाज हो ही नहीं सकते, हम तो फ़कीर हैं। ये कैसे हम सोच सकते हैं कि नहीं पता नहीं अब मैं इधर उधर अपना वक्त ज़ाया कर दूँ और ये टाइम गुजार दूँ, कैसे हो सकता है? वैसे हम सारा साल कितनी परेशानियों में रहते हैं, लोगों को कहते हैं फलां तुम मेरे लिए दुआ करो, फलां तुम मेरे लिए दुआ करो, लेकिन जब हमें अल्लाह ने बता दिया कि अब ये तुम्हारी दुआ के कबूलियत का वक्त है, उस वक्त हमने वो वक्त गंवा दिया। तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि आपको अता करें, अल्लाह चाहते हैं कि अपने लिए जन्नत ले लो, अल्लाह नहीं चाहते कि किसी को वो अजाब दे। देखिए जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8 दरवाजे हैं। और जहन्नुम के कितने हैं? 7 हैं। शाबाश, जन्नत के 8 हैं और जहन्नम के 7 हैं। इससे क्या पता चलता है? देखिए आप, ये यहाँ पे हम इस हॉल में है ना, इसमें कितने सारे दरवाजे हैं, ये तीन चार, चार दरवाजे हैं। क्यों चार क्यों रखे गए? इसलिए कि जिस जगह पे लोगों ने ज्यादा आना हो ना, वहां पे दरवाजे भी ज्यादा रखे जाते हैं। और बाथरूम के कितने दरवाजे हैं? उसका एक ही है, क्योंकि जरूरतन किसी ने जाना होगा। तो जिस जगह लोगों की आमद ज्यादा हो, वहां के दरवाजे भी ज्यादा होते हैं। जन्नत में अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज्यादा लोग चले जाएं, तो उसने दरवाजे भी ज्यादा रखे हैं। वो नहीं चाहता लोगों को जहन्नुम में भेजना, उसके साथ ही रखे हैं। उसके काम होना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम जन्नत ले लो। और उसमें एक दरवाजे का नाम क्या है? जो रोजेदारों के लिए, बाबो रयान। अल्लाह ताला ने वो दरवाजा ही रोजेदारों के लिए रखा कि तुम इस दरवाजे से बेधड़क दाखिल हो जाओ, इसलिए कि तुम मेरी खातिर भूखे प्यासे रहते थे, तुमने मेरी खातिर रोजे रखे थे। तो अल्लाह ताला इस महीने के अंदर रोजेदारों के, ये देखो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक इज्जत अफजाई है रोजेदार की, कि एक दरवाजे का ही नाम रख दिया, अर्रयान, यहाँ से मेरे रोजेदार बंदे दाखिल होंगे। और इब्ने जौजी फरमाते हैं कि रोजा तीन तरह का होता है, या तीन दर्जे होते हैं रोजे के। एक रोजा वो होता है जो इंसान के आज़ा का रोजा होता है, जिसमें आप खाना पीना छोड़ते हैं, जिसमें आप अपनी नफसानी ख्वाहिश, जो अपनी जिनसी ख्वाहिश है, इसको कंट्रोल में रखते हैं। ये एक रोज़ा है जो हम सब रखते हैं। एक उससे ऊपर के लेवल का रोज़ा है, और वो है अकल का रोज़ा, जिसमें इंसान अपने जहन में भी ऐसे ख्यालात, ऐसी बातों को नहीं आने देता, ऐसे वसवास को नहीं आने देता जो शैतानी हों, जो बुरे हों, ऐसे इससे भी अपनी जहन को भी पाक साफ रखता है, वो है अकल का रोज़ा। और तीसरा रोज़ा जो सबसे आला दर्जे का रोज़ा है, वो उलमा फरमाते हैं, इब्ने जौजी ने ख़ास तौर पे, उनकी ये है कि वो फरमाते हैं कि ये वो रोज़ा है जिसमें इंसान का ध्यान सिवाय अल्लाह के और किसी तरफ भी ना जाए। ये सबसे आला दर्जे का रोज़ा है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला रोज़ा है। तो फरमाया कि बाकी फिर रोज़ेदारों का, जो अपना आज़ा का रोज़ा रखते हैं, उनका रोज़ा तो मगरिब के वक्त इफ्तार हो जाता है, लेकिन जो रूह का रोज़ा रखता है, उसका रोज़ा उस दिन इफ्तार होगा जिस दिन अल्लाह का दीदार होगा उसको, क्योंकि तो उसने तो ज़िंदगी भर का रोज़ा रख लिया। और इसकी दलील वो ये पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, रोज़ा रखो देख के, यानी चाँद को देख के। इस हदीस का मतलब है, सूमू ली रोअयताही, देखो चांद को और फिर यानी रोज़ा रखो। इसमें चांद का नहीं जिक्र आया, लेकिन उन्होंने इसका एक और मफहूम निकाला। उन्होंने कहा कि रोज़ा रखो, लाम यहाँ पे ली का लाम लामे तालील है, यानी अल्लाह के दीदार के लिए रखो रोज़ा। और रोज़ा ऐसे इंसान का इफ्तार कब होगा? जब उसको अल्लाह का दीदार होगा। तो वो हदीस में भी आता है ना, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी कब है? जब वो इफ्तार करने लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है, रोज़ा आराम से खैरियत से पूरा हो गया, इफ्तारी का टाइम आ गया। तो एक तो उस वक़्त खुशी होती है, और दूसरी खुशी उसको उस वक़्त होगी जब उसकी रहमान से मुलाकात होगी। तो जब आप रोज़ा इफ्तार करने लगे ना, तो सिर्फ एक खुशी का ध्यान ना रखें, उस दूसरी खुशी को भी याद रखना कि एक वो भी खुशी का दिन होगा जबकि मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। और उससे मुलाकात से ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या हो सकती है इंसान के लिए? तो ये दो खुशियाँ हैं रोज़ेदार के लिए, ये दो खुशखबरियाँ मिल गई हमें जब हम रोज़ा रखते हैं, कि दो खुशियाँ हमें मिलने वाली हैं। एक तो ये यहाँ की मिल गई, और एक वो वहाँ की है। उसको भूलना नहीं है आपने, और ऐसी जन्नत के लिए आपने, और ऐसे अल्लाह के दीदार के लिए, और दीदार अल्लाह का तभी होगा जिस वक़्त जन्नत में जाएंगे, तो ऐसी चीज़ के लिए आपने कोशिश करनी है। और ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गुनाहों से बचा के रखें, क्योंकि इस महीने में जहाँ नेकी करने का इंसान का एक, यानी 70 times मल्टीप्लाई हो रहा है, या कई गुना उसका अजर मिल रहा है, वहाँ पर गुनाह की कबाहत भी बढ़ जाती है। आप ये देखें ना कि जैसे आप बाहर कहीं गुनाह करें, कोई गलत बात करें, तो वो भी गुनाह है, लेकिन अगर आप मस्जिद में बैठ के करें तो क्या ज़्यादा बड़ा गुनाह नहीं है? है ना? और अगर आप हरम में करें, अल्लाह के घर जाके करें, तो और भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह बाकी महीनों में गुनाह के काम गुनाह ही हैं, लेकिन कोई इस महीने में करे ना, तो वो और भी ज़्यादा गुनाह की बात है, क्योंकि उसने इतनी भी हया नहीं की कि ये वो महीना है जिसकी इतनी हुरमत है, इतनी इसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इतनी इसमें रहमतें और बरकतें हैं, और वो फिर भी गुनाहों में पड़ा हुआ है। तो इस महीने को बड़े ध्यान से, बड़े ख्याल के साथ गुजारना है, वेस्ट नहीं करना, और इस महीने का ख्याल करना है। ये महीने की मिसाल ऐसे है जैसे बादशाह का कोई नुमाइंदा हो, बादशाह का रिप्रेजेंटेटिव हो, बादशाह अपने नुमाइंदे को एक कौम की तरफ भेजे और वो कौम उसका बड़ा इकराम करे, बड़ी इज्जत करे, बड़े अच्छी उसकी मेहमान नवाजी करे, तो वो बादशाह के पास वापस जाके क्या कहेगा कि इस कौम ने मेरा बड़ा इकराम किया, और बादशाह इससे खुश होगा कि इसने मेरे नुमाइंदे का इकराम किया, इसका मतलब इसने मेरी इज्जत किया। और अगर बादशाह अपने सफ़ीर को या अपने नुमाइंदे को भेजे किसी कौम में और वो उसकी परवाह ही ना करे, वो उसकी तरफ तवज्जो ही ना दे, तो वो बादशाह को आगे शिकायत लगाएगा ना कि इस कौम ने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं किया, मैं इनके पास गया था, इन्होंने मेरे तरफ तवज्जो भी नहीं की। इसी तरह रमज़ान है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का सफ़ीर है, एम्बेसडर है हमारे पास, ये हमारे पास आता है और ये देखेगा कि हम इसके साथ क्या उसने सलूक करते हैं, और ये जाके अल्लाह को बताएगा, और क़यामत के दिन फिर ये सिफारिश करेगा अगर इसका अच्छा इकराम किया होगा। तो ये इज़्ज़त के काबिल महीना है, ये वो महीना है जो जो हमसे तकाजा करता है कि हम वाकई इसके इसका इतना एहतराम भी करें, इसका इतना इकराम भी करें, इसमें ऐसे अपने आमाल करें कि अल्लाह के पास जाके हमारी तारीफ़ें करें। गो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, लेकिन ये भी सिफारिशें हैं जो अल्लाह के हाँ पेश करेंगे, रमज़ान भी, रोज़ा भी, कुरान भी, ये सिफारिशें पेश करेंगे। तो रमज़ान में अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ बेहतर कर लें। जो दूर थे, जो अभी तक ताल्लुक़ काट के बैठे हुए थे, उनको चाहिए कि वो वापस अल्लाह की तरफ आएं। आप देख रहे हैं, वैसे अल्लाह ताला ने सुबहानल्लाह इसमें क्या बरकत रखी है, इतने बड़े कोई गुनाहगार भी हो, कोई शराबी वो भी हो ना, वो कहते हैं रमज़ान आ गया ना, रमज़ान में नहीं शराब पीनी, वो कोई ऐसे आवारा भी हों, बुरे काम करने वाले हों, जिनाकार भी हो, वो भी कहते हैं कि रमज़ान है, नहीं ये नहीं करना। लोग म्यूज़िक गाड़ियों में सुनते हैं रमज़ान आता है, कहते हैं नहीं रमज़ान है, रमज़ान में नहीं सुनना म्यूज़िक। ड्रामे देखने वाले ड्रामे बंद कर देते हैं, कहते नहीं नहीं रमज़ान है। तो आप देखें कि सुभान अल्लाह इस महीने की कैसी बरकत है कि हर एक से अल्लाह ताला करवा लेता है इस महीने में काम, तो जो दूर है वो अल्लाह ताला के करीब आ जाए। जो पहले से, जो कोई अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ पहले से जोड़े हुए थे, अब वो और ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं इस महीने में, और ज़्यादा अल्लाह के करीब आ सकते हैं, अपने दर्जे बुलंद करवा सकते हैं। ये वो महीना है जो आपके दर्जे, अगर आप 1 पे हैं तो आपके दर्जे 100 पे ले जा सकता है। देखिए ना, एक महीने में आप 1000 महीनों से ज़्यादा की इबादत कर लें तो एक रात में बल्कि, और बाकी दिनों की इबादत तो अलग है। तो ये वो महीना हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और एक सीक्रेट बात आपको बताती हूँ मैं, वो सीक्रेट बात ये है कि जो जन्नत है ना, जन्नत में एक एक अमल, आपको पता है उसकी भी अल्लाह के यहाँ एक ज़र्रे के बराबर, मई अमल मिसकाला ज़र्रा तिन खैर है ना, ज़र्रे के बराबर भी कोई अमल करेगा तो देख लेगा, तो जन्नत में ज़र्रे के बराबर अमल से भी फ़र्क पड़ जाएगा, ज़र्रे के बराबर अमल से भी। ऐसे नहीं है कि भाई आप, मैंने एक अमल किया तो आपका ज़र्रे के बराबर ही ज़्यादा था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये दुनिया में है कि कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। जिस तराजू में ज़र्रे के बराबर अमल तुल सकता है ना, वहाँ पे ज़र्रे के बराबर अमल से फ़र्क भी पड़ेगा दर्जों में। हम अब यहाँ पे रहें तो हम कहें अच्छा एक घर है जो जिसकी मसलन कीमत 1 लाख है, और 1,10,000 है जिसकी कीमत कॉर्नर वाले की है, वो भी वहीं रह रहा है, वो भी वहीं रह रहा है, चलो आमने सामने रह रहे हैं, उसका कॉर्नर मिल गया, उसका नहीं मिल गया, ये तो छोटे छोटे फ़र्क हैं, जन्नत के फ़र्क बहुत बड़े बड़े हैं। आपने अगर एक सुभान अल्लाह भी ज़्यादा की तो आपका दर्जा मुझसे फ़र्क होगा, मेरी एक कम है। आपने अगर एक दफ़ा सलाम ज़्यादा किया है तो आपकी एक नेकी बढ़ गई ना मुझसे, उसकी वजह से आपका फ़र्क हो जाएगा दर्जे का। फिर कितना कीमती है ये वक्त जिसमें हम एक सुभान अल्लाह कह के अपने लिए फर्क, वहां पे डिफरेंस इतना बड़ा मेक कर सकते हैं। लेकिन जन्नत में तो सब होंगे, लेकिन वहां पे भी तो दर्जे हैं, और वहां के हमने ऊंचे दर्जे लेने की कोशिश करनी है, ताकि हम किन के करीब हों, सहाबा कराम के, अंबियाए कराम के, सुलहा के, शुहादा के, अल्लाह के मुकर्रबीन के। क्या ये दिल नहीं चाहता, जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम यहाँ पे तड़पते हैं, क्या ये दिल नहीं करेगा कि हमारे कोई दर्जे कहीं करीब ही हो जाए? हाँ, या उसमें दिल चाहेगा वो हो कोई बात नहीं, वो वहाँ पे रहते हैं तो हम यहीं पे काफ़ी हैं, अभी तो हम दूर हैं ही हैं, और यहाँ पे हम रहते हुए ये ख्वाहिश करते हैं, हाय काश उस ज़माने में हम पैदा हो जाते ना तो कितना अच्छा होता। तो वो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब कि वो वापस हम जाएँ और आप उस ज़माने में पैदा हो जाएँ, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर हाँ, ये कर सकते हैं कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, उसमें कहीं करीब करीब के दर्जे पालें। तो उसके लिए क्या मेहनत नहीं करने की ज़रूरत? तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप मेहनत करके, आसान कर दिया ना, थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा पालो, थोड़ा सा कुछ करो, और अल्लाह देने के लिए तैयार है। देने वाले ने कहा, मैंने खुद दरवाजे खोल दिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, चाहो तुम, मांगो तुम, तुम मांग के तो देखो, तुम कह के तो देखो। तो ये महीना है कि बस हमने वो रास्ते जो छोड़े हुए थे, वो नेकियां जो हम काफ़ी अरसे से भूले हुए थे, या वो जो हमने पिछले रमज़ान में की थी उसके बाद हम भूल ही गए कि दोबारा करनी है, अब फिर रमज़ान आ रहा है, हम फिर अपना मुहासबा करें। तो सबसे पहले अल्लाह ताला सूरह हशर में फरमाते हैं ईमान वालों को, या अय्युल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वलतंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स ये देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या भेजा है। ये रमज़ान में नहीं हम करेंगे, हम रमज़ान से पहले ही देखेंगे कि हमारे पिछले रमज़ान कैसे गुजरे हैं, उनमें हमने क्या किया, हमें और बेहतर करने के लिए क्या करना है। क्या उनमें भी सिर्फ हम टाइम टेबल बना बना के तो नहीं रखते रहे? टाइम टेबल तो बहुत मिल जाते हैं अब आजकल, तो ये आपके पास है ना, इसके अंदर बहुत मिल जाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो अच्छा, अब वो करने के लिए हमने सोच लिया था, टाइम टेबल भी कहीं लगा लिया, लेकिन कर कुछ भी नहीं सके। क्या ऐसा हुआ था? कितना कुछ अचीव किया था, 50%, 60%, कैसे 100% पे लाना है ये सोचना है। वल तंजोर, हर नफ्स देखे, हर एक इंसान देखे कि वो क्या अपने कल के लिए आगे भेज रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह से डरो, ये बात याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और इसी के अंदर एक और आयत अगली जो है, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाए ना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, कि वो अल्लाह को ही भूल गए। तो अल्लाह ताला फिर पता है इसकी क्या सज़ा देता है जो अल्लाह को भूल जाता है? आप ये सोचते होंगे कि अल्लाह उसको भूल जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने उनको अपना आप, उनका अपना आप भुला दिया, उनको अपना आप भी याद नहीं रहता। जैसे आप, अल्लाह ताला माफ़ करे, आप किसी नशा करने वाले नौजवान को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपना भी ख्याल नहीं है, तुम आग लगा रहे हो अपनी ज़िंदगी को, तुम्हें समझ नहीं है। उसको अपना आप ही भूल गया वह कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह अपनी तबाही कर रहा हूँ। इस तरह से अल्लाह ताला इंसान को उसका अपना आप भुला देते हैं, उसको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहा, किस रास्ते पे जा रहा। तो अल्लाह ताला फिर आगे फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, ये बात बड़ी प्यारी है, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं होते। अल्लाह ताला ने बता दिया, ये ना समझना कि बराबर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम्हें जन्नत के लिए कोशिश करनी ही करनी है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि चलो जन्नत ना मिली तो कोई छोटा घर मिल जाएगा, वहाँ पे छोटा घर वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे या तो जन्नत है या फिर जहन्नम। तो तुम्हारे पास चॉइस है ही नहीं एक्सेप्ट ये कि तुम इस जन्नत के लिए स्ट्राइव करो, इसके लिए कोशिश करो, इसके लिए मेहनत करो। यू हैव नो ऑप्शन, बाकी सब दरवाजे बंद हो गए। अब यहाँ तो ये जहन्नम का गढ़ा है, यहाँ वो जन्नत की मंजिलें, ये दोनों बराबर नहीं। अब ये बातों में पता है कि ठीक है, जो जन्नत में होगा वो कैसे बराबर हो सकता है जहन्नम वाले के, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में भी जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है। एक वो है जिसकी दौड़ जन्नत की तरफ लग रही है और एक वो है जो जहन्नम की तरफ दौड़ लगा रहा है। दोनों की जिंदगियों में बड़ा फर्क होता है, दोनों की प्रायोरिटीज में फर्क होता है, दोनों के दिन और रात की एक्टिविटीज में फर्क होता है, दोनों के फैसले करने में फर्क होता है। तो हम भी जरा आईना देखें, जरा मुहासबा करें और सोचें कि हम क्या जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते पे हैं या जहन्नुम की तरफ जाने वाले रास्ते पे हैं, किस रास्ते पे पड़े हैं और किधर जाना है। ये अपने आप को आप किस तरह से आईना दिखा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेकर कि मेरे पूरे दिन के जो मशगले हैं, मसरूफियात हैं, काम हैं, वो किस तरफ ले जाने वाले काम हैं, वो मुझे किस तरफ की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये यहीं पे फ़र्क वाज़े है जन्नत वालों और जहन्नुम वालों में। जन्नत वाला यहाँ पे भी आप सोचते हैं जो आए वो बेचारा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा उसकी तो ज़िंदगी बड़ी बोर होगी, कोई ना फन होगा उसके अंदर ना कुछ है, तो उस तरफ वो तो बड़ा बोरिंग रास्ता है। ऐसी बात नहीं है, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है ना उसका रास्ता वो है कि उसका दिल सकून से भरा होता है, इत्मीनान से भरा होता है। इब्ने तैमिया को जब जेल हुई थी तो वो फरमाते थे कि मुझे तुम कितनी भी सज़ा दे लो इस दुनिया में, लेकिन मेरी जन्नत मेरे दिल में है। उनकी जन्नत उनके दिल में कैसे थी, मतलब कि जो इत्मीनान जो सुकून उनके पास है वो तो नहीं छीन सकते तुम, मेरी जन्नत मेरे दिल में, मैं उसमें रहता हूँ। तो उनकी जन्नत जो इस दुनिया में जन्नत में रहने लगे वही वहाँ की जन्नत में रह सकता है, उसका दिल मुतमईन हो जाता है। फिर दिल से हिर्स हविस और दुनियादारी भागना इसके पीछे हुब्बे जा ये ख़त्म हो जाती है, उसको तो जन्नत यहाँ ही मिल गई। जितना सुकून उसके पास होता है ना, वो झोंपड़ी में रह के भी सुकून में होता है, जबकि लोग मखमल के बिस्तरों पे भी सुकून में नहीं होते। और फ़र्क नज़र का है, हमें लगता होगा शायद बेचारे झोंपड़ी में रह रहा है, इस बेचारे की क्या, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं इसका, इसका क्या सुकून और इत्मीनान है, वो उसके दिल से पूछो। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले ही तो कामयाब हैं, उन्हीं को तो मंजिल मिल गई। तो ये इस जन्नत की तरफ हमने दौड़ लगानी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जन्नत वो है जिसका अर्ज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, उसको हासिल करने की कोशिश करो, और ये महीना बड़ा अच्छा है उस जन्नत के लिए भागने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। अगर हमने 30 दिन दौड़ लगा ली ना, तो हम फिर आदि हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब आप रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हैं, कुरान भी रोज़ खुलता है, ज़िक्र भी रोज़ होता है, तो उसके बाद कुछ दिन तक उसका बड़ा अच्छा असर रहता है वैसे, है ना। फिर वो हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही दूर होने लगते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी ख्याल आता है, फ़ौरन ज़ुबान से ज़िक्र निकलने लगता है, फ़ौरन दिल चाहता है हाँ अब कुरान पढ़ने का वक्त हो गया, दिल चाहता है हाँ तरावी का टाइम, कल तक तो हम इस वक्त तरावी के लिए गए थे। तो वो उसका असर रहता है इंसान के ऊपर। अल्लाह ताला ये आपसे 30 डेज़ या 29 डेज़ एक्सरसाइज कराते हैं कि आप इतने ज़्यादा उसके यूज टू हो जाते हैं कि फिर आप उसको मिस करते हैं बाकी दिनों में, और फिर अगर आप जारी रखना चाहें तो उस रूटीन को जारी भी रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना प्यारा महीना देकर फिर हमारे लिए ये दौड़ लगाना, ये रूटीन बनाना आसान कर दिया, क्योंकि शयातीन को बंद कर दिया, और अल्लाह ताला ने अपने साथ ताल्लुक़ के फ़िक्स करने को भी आसान कर दिया। पता है अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हमारा अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ हो जाए, जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। कैसा ताल्लुक़ होता है बच्चे का माँ के साथ, ये जो इतनी एज के बच्चे हैं जो यहाँ पे बोल रहा है बच्चा, ऐसे बच्चे का ताल्लुक़ माँ के साथ कैसा होता है, उसकी तो कुल कायनात ही माँ होती है, ऐसा ही है ना। वो खुश होता है तो माँ की तरफ दौड़ता है, उसको कोई बच्चा मारता है तो रोता हुआ भी माँ की तरफ ही जाता है, कोई अगर उसको कोई चीज़ देता है तो पहले माँ की तरफ देखता है माँ से इजाज़त है कि नहीं है लेने की, और उसको कहीं चोट लग जाए तब भी माँ ही याद आती है उसको, और अगर किसी दिन माँ मारे फिर क्या होता है, फिर भी माँ की टांगों से चिमटता है, छोड़ के नहीं जाता उसको, और अगर माँ नज़रों से ओझल हो जाए तब बेकरार हो जाता है कि मेरी माँ कहाँ है, लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला चाहते हैं आप ऐसे अल्लाह के साथ हो जाएं, जब खुशी मिले तब भी अल्लाह की तरफ रजू करना है, अगर कोई गम आए तो भी अल्लाह कहता है कि मेरे पास भाग के आओ ना। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए तो तब भी, ये नहीं कि अल्लाह से नाराज़ होकर बैठ गए, तभी उसी के साथ चिमट जाना है। अल्लाह आजमाइश तेरे पास से आई ना तो मैंने जाना कहाँ है, ना मैंने आना तो तेरे पास ही है। जैसे वो बच्चा माँ मारती है तब भी उसी की टांगों से चिमटता है, नाराज होकर चला नहीं जाता, जाओ मैं किसी और माँ के पास जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहता। और माँ नजरों के सामने नहीं है तो कितना बेचैन होता है, तो तुम्हें भी करार नहीं आना चाहिए अल्लाह से दूर होके, तुम्हें मिस करना चाहिए कि मैं कैसे अल्लाह से दूर हूँ। अल्लाह मुझसे मेरा अल्लाह के साथ अगर कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है, मैंने अल्लाह से बात नहीं की अगर इतने दिन, तो मेरा दिल बेचैन होना चाहिए, मेरे अंदर बेकरारी होनी चाहिए, मैं कैसे अल्लाह के बगैर रहूं। और नाराज़गी का तो सवाल ही कैसे हो सकता है, जिसकी कुल कायनात, जिसकी सारी दुनिया अल्लाह है, हाँ तो वो कैसे अल्लाह से नाराज़ होकर बैठ सकता है, और वो कैसे अल्लाह को भूल सकता है। उस बच्चे ने रोटी भी खानी है तो माँ के पास आएगा, दूध दूध चाहिए माँ के पास आएगा, प्यास लगी है भूख लगी है सब माँ के पास ही है, सब चीज़ों का उसका हल ना वो अपनी माँ में देखता है, हालांकि उसकी माँ तो कमज़ोर सी ही होती है, और अल्लाह तो हर ताकत से बड़ी ताकत है। तो क्या हमें इस इतने बच्चे से भी ज़्यादा हमें समझ नहीं है, हम इतने ना समझ हैं। तो अगर हम अल्लाह को छोड़ के दूर होते हैं ना, तो हम इस छोटे बच्चे से भी ज़्यादा ना समझ हैं, पता है? इसको समझ है कि मुझे कहाँ से मिलना है, इसको समझ है कि कौन मेरे दुखों का मदावा कर सकता है, कर नहीं सकती वो, लेकिन उसको ये यकीन है कि यही करेगी। और मुझे और आपको यकीन नहीं है जो ईमान के दावे करते हैं और कहते हैं हमारा अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, और मुझे और आपको ये भरोसा नहीं है, फिर हम क्यों जब दुख जब गम या जब कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह से ही दूर हो जाते हैं, और कभी किसी के दर पे पड़े होते हैं और कभी किसी के, और खुशी मिल जाए तो फिर तो बिल्कुल ही आपे से बाहर, फिर तो अल्लाह की ज़रूरत ही अब क्या रह गई, फिर हमारा ईमान ऐसा क्यों है, हम क्यों इतने ना समझ हैं। तो ये ध्यान करने के दिन हैं, ये अब वापस पलटने के दिन हैं कि आ जाओ वापस। ये जो चीज़ें हैं ये तो जो इनामात है ना, ये तो अल्लाह के बहाने हैं आपको वापस बुलाने के। ऐसे में बच्चे को अगर अपने पास बुलाना हो तो क्या दिखाऊंगी, कैंडी कैंडी दिखाऊंगी तो कैसे, खुद ही भागा आएगा ना। अल्लाह ने ये कैंडीज रखी हैं हमारे जैसे ना समझों के लिए, फिर भागे आएंगे, हाँ भाई इतना अजर मिल रहा है, वैसे नहीं ना उन्हें आना था, वैसे सारा साल देखो अल्लाह तो वही है, हाँ वैसे नहीं आना था, अब कहते ओह ये इतना मिल रहा है, अच्छा अच्छा चलो भागो। ओ अल्लाह तो वो ज़ात है, वो तो इस काबिल ही है कि आप उसकी तरफ भाग भाग के जाएं, लेकिन हमें कैंडी चाहिए होती, जब तक कैंडी ना दिखाई जाए हम नहीं जाते। अगर अल्लाह ये अजर ना भी रखता तब भी हमें भाग भाग के उसी के पास जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें कि उसको ये अजर दिखाने पड़ते हैं हमारे जैसों को लाने के लिए, वरना अल्लाह तूने तो हमें इतना अता किया है, इतना अता किया है, हमारी हैसियत हमारी औकात से ज़्यादा है। तो अल्लाह अगर तू ये ना भी देता तो तब भी हम सजदे में गिरे पड़े रहे ना सारी ज़िंदगी, तब भी अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकते, फिर भी वो कहता मैं और दूंगा मैं और दूंगा, ये देखो ये दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया, ये दरवाज़ा भी तुम्हारे लिए खोल दिया, ये लो इधर आओ, ये इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, कहीं रात को जगाने के लिए बहाने, क़यामुल लैल का इतना अजर, तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, कहीं एक रात के लिए तो अब कोशिश करो ताकि सारी रातें ही आप जागें तो उसकी तलाश करो, वरना एक रात का बताना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल था। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बाद में बता देते, अगर वो भूल भी गए थे तो बाद में क्या वही नहीं आई, बाद में नहीं बताया जा सकता था, बताया जा सकता था, लेकिन वो चाहता है सारी रातें, फिर वरना तो कितनों ने आना था बताएं, उस एक रात के सिवा किसी ने जागना नहीं था, अब सारी 10 रातें क्यों जागते हैं, या कम अज़ कम 5 रातें तो ताक रातें सब जागते हैं कि इस तलाश में कि हाँ जी आज भी ताक रात है, हो सकता है ये आज भी ताक रात, वो क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम बार बार आओ उसके पास, बार बार आओ उसके पास। और बाज दफा इसी वजह से वो फौरन तुम्हें अता नहीं करता, तुम्हारी दुआएं फौरन जैसे तुमने मांगी है वैसे क्यों नहीं दे देता, इसलिए कि वो कहता है मेरे फरिश्तों मुझे अच्छा लगता है इसका रोना, अगर मैंने इसको अता कर दिया ये फिर मुझसे दूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उसको इंतज़ार कराता है, इंतज़ार कराता है। और आप कहते हैं इंतज़ार क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं मिल रही, ये काम मेरा जल्दी क्यों नहीं होता। वो जल्दी इसलिए नहीं होता कि वो तो जल्दी हो गया तो तुम फिर पराए हो जाओगे, फिर दूर हो जाओगे, तो वो तुम्हें दूर नहीं करना चाहता। हालांकि ये वो रब है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो रब है जिसकी मखलूक इतनी है कि हमें गिनती नहीं है उसकी मखलूक की। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते कि उसके लश्कर कितने हैं। तो उसके लश्कर हमें तो गिनती भी नहीं है, उसकी इतनी मखलूक है। इसको ऐसे समझें, मसलन सदर है जो यहाँ का, क्या उसको अपने पूरे मुल्क के लोगों के नाम पता है? पता है क्या उसको? नहीं, नाम तक नहीं पता, हाल क्या पता होंगे उसको, ये भी नहीं पता होगा कितने लोग कहाँ रहते हैं, किधर क्या है इनका हाल। जिसके अंडर जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही जाहिर ही बात है वो कमज़ोर है, वो कैसे जान सकता है? यहाँ का जो गवर्नर है उसको नहीं पता होगा कि मेरी स्टेट में कितने लोग हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, क्या क्या करते हैं, क्या किधर रहते हैं, क्या उनके हाल अहवाल हैं, रात को खाना खा के सोए कि नहीं सोए, उनके पास नौकरी है कि नहीं है, नहीं पता होता। क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे मालूम होगा? लेकिन अल्लाह, वो रब जिसकी कायनात में इतने बड़े बड़े सितारे और सैारे हैं कि हमारा सूरज भी जिनके सामने मांद पड़ जाए और छोटा हो, वो रब इतने से तिनके इंसान की भी ज़रूरियात और उसकी जो भी ख्वाहिशात और उसकी जो भी दुआएं और उसकी जो भी बातें और उसकी जो भी ज़िंदगी और उसके जो भी मसले, हर चीज़ से ना सिर्फ वाकिफ़ है, अता भी करता है, उसका ध्यान भी रखता है, उसकी निगहदाश्त भी करता है, उसकी एक एक बात को सुन रहा है। हाँ, वरना हमारी क्या हैसियत ना, हमारी तो वो हमने जो उस दिन बात की थी कि हमारे तो इस पूरे सिस्टम की भी कोई हैसियत नहीं जिसके अंदर हम रहते हैं, और हमारी ज़मीन की कोई हैसियत नहीं है, उसके ऊपर रहने वाले इंसान की क्या हैसियत होगी? इतने छोटे से इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इतना एहतमाम किया कि एक महीना भेज दिया, फिर उसके अंदर इतने इनामात रख दिए, इसके ऊपर क्या हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमारा इतना ख्याल रखा? ज़रूरत तो मेरी है कि बख्शिश मुझे मिल जाए, ज़रूरत तो मेरी है कि जन्नत मुझे मिल जाए, ज़रूरत तो मेरी है कि अजर मैं कमा लूँ, अल्लाह की तो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो मेरी है कि मैं अल्लाह से अपना ताल्लुक़ सही करूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर देखो वो तुम्हारे चाओ कितने करता है, तुम्हारे लाड कितने करता है, कि वो तुम्हें ऐसे ऐसे तरीक़ों से अपनी तरफ बुलाता है कि आ जाओ मेरी तरफ, मत भूलो मुझे, मत दूर जाओ मुझे। तुम सोचते हो मुझे भूल के वो तुम कुछ पालोगे? नहीं, तुम्हें अपना आप भी भूल जाएगा, अपना आप भी याद नहीं रहेगा। और वाकई जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं उनकी ज़िंदगियाँ मिज़रेबल हो जाती हैं, सकून नहीं कहीं होता, और वो सोचते हैं पैसा कमाने में सकून मिल जाएगा, और कमाऊंगा शायद तब सकून मिलेगा। नहीं, आप कितने ही लोग देखें उनके पास क्या चीज़ नहीं है लेकिन बेसकून है ज़िंदगी में, कोई यानी इत्मीनान नाम की चीज़ नहीं, खुशी नाम की चीज़ नहीं, हालांकि पैसे बहुत हैं। क्योंकि सकून अल्लाह की तरफ से आता है, हम चीज़ें लेके समझते हैं इनसे सकून मिलना है। मसलन मैं सोचूं मेरे पास अगर इस मॉडल की गाड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मेरे पास ऐसा घर होगा और फलां जगह घर होगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें पाके हम सोचते हैं ये खुशी देती हैं, वो खुशी नहीं दे सकती। वो एक लोहे का डब्बा है, वो मिट्टी गारे के मकान है, ये कैसे खुशी दे सकते हैं? खुशी अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हंसाता है, जिसको चाहता है रुला देता है। खुशी और गम किसके पास है? हंसना चाहते तो हंसने के ख़जाने किसके पास है? हाँ, वो चाहे रुला दे, वो चाहे हंसा दे, फिर तुम्हें राज़ी किसको करना है? फिर तुम्हें मिन्नतें किसकी करनी है? फिर तुम्हें खुश किसको करना है? फिर कौन तुम्हारे सारे मसले हल करेगा? ये वो अल्लाह है, उसकी तरफ आओ, उसकी तरफ पलटो। और सिर्फ रमज़ान में नहीं पलटो, अल्लाह क्या हमें तेरी ज़रूरत सिर्फ रमज़ान में? नहीं, हमें तो तेरी ज़रूरत हर वक्त है। क्या रमज़ान के बाद अगर उनका 70 गुना अजर नहीं मिलता किसी फर्ज को अदा करने का, या नफल फर्ज के बराबर नहीं होते तो क्या छोड़ दोगे? तब भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह तेरी अता इतनी है कि एक तरफ आप ये देखो जो जो चीज़ें आपको अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इंताउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, तुम अगर नेमतें अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें मिली हैं गिनना चाहो ना, गिन भी नहीं सकते। हाँ, तो उन नेमतों को एक तरफ देखो और एक तरफ अपनी बातें और अपनी जो अल्लाह ताला के अहकाम की बजावरी है उसको देखो, कोई मैच नहीं है। कितनी कमी है हमारे अंदर, सब कुछ कर भी लेना तब भी कमी है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हम वही मैंने कहा जैसे सजदे में भी पड़े रहे ना, एक भी नाफरमानी ना करें और सारा टाइम अपना सजदे में गुजार दें, तब भी हम अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकते। तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये हमें महीना इनायत किया, इस महीने का मिलना और इसके अंदर ये जो सारे इनामात हैं, इसी से पता चलता है कि मेरा रब देने में बेपरवाह है, वो देता है देता है और उसको कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए उसने ये महीना हमारे लिए रखा कि हम अब लूट लें वो बरकतें और रहमतें जिनके दरवाजे उसने हमारे लिए खोल दिए। और बड़ी महरूमी और बड़ी बदनसीबी है कि जो फिर भी इस महीने को पा के और अपनी बख्शिश ना करवा सके, उसकी बड़ी महरूमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देते थे, पता है ना आपको, किसी दुश्मन को भी कितना दुश्मनों ने उनके साथ क्या क्या सलूक किया, बद्दुआ नहीं दी। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये बद्दुआ की कि हलाक हो जाए वो जो रमज़ान को पा ले और अपनी बख्शिश ना करवा सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे आमीन फरमाया। तो बड़ी बदनसीबी है अगर हमारी बख्शिश ना हो पाई, तो यही बस इस कोशिश में लगे रहना इस महीने में कि हमारी बख्शिश हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। उसके लिए हम जो प्रोग्राम भी हमने एक रखा है, जो रमज़ान का हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, लास्ट 10 ईयर से वो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसमें हम आपको बताते हैं किस तरह आप अपना रमज़ान भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, छोटे अमल करके थोड़े यानी करके बहुत बड़ा अजर ले सकते हैं, कैसे आप फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं, कैसे आप हज और उम्रे के बराबर सवाब घर बैठे ले सकते हैं, कैसे आप जन्नत में महल अपने बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब हमें नहीं पता होगा कि कौन सा छोटा सा मैं काम कर लूँगी तो मेरा एक महल बन जाएगा वहाँ पे, छोटा सा मैं अगर काम कर लूँगी तो फरिश्तों से दुआएं मिल जाएंगी, ये हमें नहीं पता होता। छोटा सा अमल कर लूँगी हज उम्रे का सवाब मिल जाएगा, ये नहीं पता होता क्या करूँ। तो वो हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ताकि आप इस महीने से यानी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला इसके फ्लायर भी हमारे पास हैं, या आपको फ़ोन में भी आप सुन सकते हैं। इसका यह है कि आपको सुबह के वक्त यानी सहरी के बाद फजर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये टाइम टेबल दिया जाएगा कि आज का दिन आप अपना कैसा गुजारें। और उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि हमें डिफरेंट चीज़ें अगर पता भी थी तो बाज़ दफ़ा जहन से निकल जाती हैं, भूल जाती हैं, तो वो भी हमें याद आ जाती हैं और शुरू पहले दिन से ही हम एक रूटीन में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये फ्लायर भी आप लोग लेकर जाइएगा। इसी तरह आपके लिए दुआओं के कार्ड्स हैं, एक दुआएं जो रमज़ान की हैं, इफ्तार की दुआएं हैं वो अपने पास रखें, इल्म के हसूल की दुआएं और कुनूत नाजला है, तो ये कार्ड भी आप अपने साथ रखिएगा। इंशाल्लाह इन दुआओं को आप कुनूत नाजला ख़ास तौर पर जो हमारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में जिनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए कुनूत नाजला आप करें, उसका तरीका भी यहाँ पर लिखा हुआ, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह कौन कौन लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अभी तक रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते? अच्छा, माशाल्लाह सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी क्लास में रजिस्टर्ड हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं कि जो नहीं हैं, तो मैं उनको भी इन्वाइट करूँगी कि आप ना सिर्फ ये रमज़ान का प्रोग्राम सुने बल्कि अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे फ्राइडे को लाइव क्लास होती है, इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप व्हाट्सएप पे भी हमारी क्लास को सुन सकते हैं। सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास पूरे हफ्ते में सुननी है, तो उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जॉब्स करते हैं या और अपनी कोई मसरूफियात की वजह से 3 घंटे की क्लास नहीं ले सकते, जो हमारी रेगुलर क्लास है वो इंशाल्लाह ताला ये व्हाट्सएप के प्रोग्राम में आके और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर सीख सकते हैं, तो वो उसमें इंशाल्लाह एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ लीजिए, जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी इंशाल्लाह उनके भी सवाल मैं लूँगी बाद में, लेकिन जो यहाँ पर हैं वो पहले पूछ लें अगर आप लोगों का कोई सवाल है। जी जी बहुत अच्छा इनका सवाल है। इनका सवाल यह है कि लैलतुल कदर का कि क्या चांस है कि कौन सी रात हो सकती है ज़्यादा। देखें, किसी रात का भी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि यही लैलतुल कदर है। बाज़ कैलेंडर्स पे 27वीं की रात के सामने बल्कि लिखा होता है लैलतुल कदर। अब ये उनको पता नहीं किसने बता दिया होता है कि वही लैलतुल कदर है, हालांकि लैलतुल कदर का तो किसी को भी मालूम नहीं। आप 21, 23, 25, 27 और 29 में से ये भी है उलमा की राय कि हर साल रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही रात हो, हो सकता है किसी साल 21वीं हो, किसी साल 25वीं। और वाकई ऐसा देखा गया कि वो जो सारी उसकी निशानियां और जो उसकी बरकतें समझ में आती हैं ना, पता चलता है कि वाकई रोटेट होती है ये रात, तो कोई भी हो सकती है। इसलिए हर रात में उतनी ही मेहनत करनी है, ठीक है जी। अब रेडी है, थोड़ा सा आप ये देख लें इसको, वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह जी।
سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت جلد ان شاء الله ہم ایک انتہائی مبارک مہینے کو خوش آمدید کہنے والے ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹ سکے اور اپنی مغفرت کروا سکے. ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے خود رب العزت یہ انتظام فرماتا ہے کہ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بندے بغیر کسی رکاوٹ کے زیادہ سے زیادہ نیکی سمیٹ سکیں. اس کے باوجود اکثر ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کم وقت میں کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، اور زیادہ وقت ہمارا اسی الجھن میں گزر جاتا ہے کہ کون سا کام کریں جس کا ثواب زیادہ ہو، وقت کو کیسے مینیج کریں اور کیسے تھوڑا کر کے زیادہ حاصل کریں. اسی طرح رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جوش بھی ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے اور نیکی کرنے میں سستی آنے لگتی ہے. اسی کے پیش نظر الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ پچھلے 10 سال سے ہر رمضان میں سحور اسپیشل پروگرام کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں آپ کو نیکی کے لیے ابھارا جائے گا، نیکی سمیٹنے کے وہ طریقے بتائے جائیں گے جن کی طرف اکثر توجہ نہیں دی جاتی، تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے والے کام بتائے جائیں گے. مسنون دعائیں اور مسنون اذکار بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ایمان تازہ کرنے والی اور دل کو نرم کرنے والی باتیں بتائی جائیں گی تاکہ آپ پورے 30 دن نیکیوں کو جوش و خروش کے ساتھ کریں اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے. فورٹی فائیو منٹس کا یہ مختصر سا پروگرام ہر صبح یو ایس ایسٹرن ٹائم کے مطابق 4:45 AM پر سن سکتے ہیں اور اپنا ہر دن کا ٹائم ٹیبل اس کے تحت بنا سکتے ہیں. آخری 10 راتوں میں ہم سب اکٹھے مل کر جاگیں گے اور اس کے لیے سحری سے پہلے یو ایس ایسٹرن ٹائم کے مطابق 2 AM پر یہ پروگرام کیا جائے گا، جس کے آخر میں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوگا. لائیو سننے کے لیے ہمارا نمبر ہے 712-432-1001، ایکسٹینشن ہے 491-760-789. آپ آن لائن سن سکتے ہیں الرحمہ.org لائیو براڈ کاسٹ پر، یا پھر پیل ٹاپ پر الرحمہ سحور اسپیشل کے نام سے ہمارا روم ہے. اس کے علاوہ فیس بک پر الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی ہم لائیو ہوں گے. اگر کسی وجہ سے آپ لائیو نہ سن سکیں तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नंबर है 712-432-1011, एक्सटेंशन 491-760-789#। ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पर भी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर भेज दी जाए तो हमारा नंबर नोट करें 732-305-0744। आप रिक्वेस्ट भेजिएगा और इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करें 732-443-0519। अल्लाह ताला आने वाला रमज़ान आफियत, सेहत और खुशियों के साथ दिखाए और हमारे लिए ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। आमीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.